ओम शांति। बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख का दरवाजा खोल दिया। प्यूरिटी को कितना अपनाया है, इसको कितना धारण किया है, उसका यंत्र क्या है, कल की मुरली थी। और यंत्र है सुख और शांति की अनुभूति, सुख की शैया, शांति स्वरूप में विराजमान, शेष शैया नहीं, विकारों की शैया नहीं। विकार क्या बन गए? मित्र बन गए, दुश्मन नहीं रहे। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पवित्रता से संबंधित है। इस विषय पर चर्चा होती नहीं है आजकल, शायद ही कहीं होती है। पुरुषार्थ की लंबी रेस का साथी ब्रह्मचर्य, कल की मुरली में भी था। प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी, शिवाचारी, शिवाचर्य, शिव बाबा के बोल और ब्रह्मा के कदम पर चलना अर्थात ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा का आचरण, ब्रह्मा के कदम, ब्रह्मा की जीवन कहानी, फॉलो फादर, इसकी तो बहुत बातें हमने सुनी है। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है ब्रह्मचर्य, जो कि आधार है किसका? पवित्रता का। ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, दोनों ही वाक्य सही है। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल पवित्रता नहीं, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, तो ये वाक्य भी उतना ही सही है। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल पवित्रता नहीं, और पवित्रता अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, क्योंकि पवित्रता अर्थात केवल उसमें ब्रह्मचर्य नहीं आता है। संकल्प, स्वप्न, आज की मुरली, वरदान, निगेटिव भाव, भावना, बोल, संकल्प, कर्म, संबंध, संपर्क, सब कुछ अपवित्रता है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, देहरूपी मंदिर में विराजमान हूं, तो पवित्रता अखंडित रहे उसके लिए ब्रह्मचर्य भी अखंडित रहे। ये विषय हम हर बार कुमारों के लिए लेते हैं, और है भी कुमारों के लिए ये टॉपिक, परंतु आज इसकी चर्चा सेलिबसी इन विमेन, स्त्रियों में ब्रह्मचर्य, ये एक अपने आप में अनोखा टॉपिक है, और उसमें भी कोई भाई ले ये तो एक थोड़ी अजीब सी बात है। परंतु आत्मिक नाते से हम सभी भाई भाई हैं, और उसी भाव में स्थित होकर सुनना और सुनाने वाले सुनाए क्या है ये ब्रह्मचर्य। सभी अपनी अपनी डायरी में एक एक लाइन से परिभाषा लिखे ब्रह्मचर्य की, जो भी हमने समझा है, फिर हम संगठित उत्तर पर चिंतन करेंगे। अभी अभी लिखना है सभी को, ब्रह्मचर्य अर्थात क्या, मैंने क्या समझा है, पॉइंट या कुछ भी ब्रह्मचर्य से संबंधित। एक मिनट पहले लिख लीजिए, हम कह रहे हैं परिभाषा, महत्व नहीं, महत्व तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं, परिभाषा, व्हाट इज डेफिनेशन, किसको कहेंगे ब्रह्मचर्य। हम ब्रह्माचर्य की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। ब्रह्माचर्य तो ब्रह्मा का आचरण, वो पता है सबको, महत्व सबको पता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, फायदे क्या क्या है पता है। परिभाषा, जैसे पवित्रता की परिभाषा कल की मुरली में बाबा ने कहा था, स्वयं सुख शांति का अनुभव, दूसरे सुख शांति का अनुभव और प्रकृति पावन, तीन चीजें थी उसमें। या फिर कभी कहते संकल्प स्वप्न में पवित्रता, या साधारण संकल्प ही ना हो, निगेटिव ना हो, व्यर्थ ना हो, इसको कहते हैं पवित्रता। यह है पवित्रता की परिभाषा। उसी तरह ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा हो सकती है, सभी को लिखना है, जिस जिसने लिखा है बताएं, जो भी लिखा है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में हर उत्तर सही होता है। हम किसी को बोल ही नहीं सकते कि यह गलत है। मन वचन कर्म तीन चीजें हैं, वो शुद्ध हो जाए तो ब्रह्मचर्य। एक और मन वचन कर्म संबंध संपर्क, सभी का प्यूरिफिकेशन, सबका शुद्धिकरण अर्थात ब्रह्मचर्य। एक और स्वप्न, उसमें स्वप्न भी आ गया अभी तो, मन वचन कर्म स्वप्न संबंध संपर्क, पांच हो गए। और देह की, और देह की सारी दुनिया को भूलकर आत्मा का परम सत्ता के साथ संबंध जोड़ देना, यह ब्रह्मचर्य है। बहुत सुंदर परिभाषा। और नहीं, ये वाली परिभाषा नहीं बताओ, एक बाप दूसरा ना कोई, ब्रह्मचर्य प्रॉपर। और ऐसी ऐसी डेफिनेशन बताओ जो संसार वाले भी स्वीकार करें, अज्ञानी। ब्रह्मा के जैसे आचरण तो है, वो ब्रह्माचर्य है। ऐसी परिभाषा जो संसार के लोग स्वीकार करें, उनको ब्रह्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, एक बाप दूसरा ना कोई उनको पता नहीं है, जैसी प्लेन परिभाषा जिसको कहेंगे कि अज्ञानी भी उसको माने कि हाँ ये उसको भी पता है ब्रह्मचर्य क्या है, उस तरह की परिभाषा है। निर्विकारी जीवन, ब्रह्मचर्य अर्थात निर्विकारी जीवन, कोई भी विकार उसमें नहीं। और वीर्य का खंडन ना हो, ये पुरुषों के लिए हम ओवरऑल डेफिनेशन पूछ रहे हैं। और श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण। और आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, उसको भी हम ऐसा जोड़ सकते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म ही स्थिति, ब्रह्माचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म ही स्थिति। ब्रह्म ही स्थिति अर्थात हम अपनी इससे ले सकते हैं परम धाम में जो स्थिति है आत्मा की, वो ब्रह्मचर्य है। जगदीश भाई ने अपनी किताब में ब्रह्मचर्य की एक जगह इस तरह परिभाषा की है कि ब्रह्म ही स्थिति में स्थित रहना, ब्रह्म ही स्थिति अर्थात आत्मा की ब्रह्म लोक में जो स्थिति है, संपूर्ण शुद्ध निर्विकार, वह ब्रह्मचर्य। और भी कोई, एक कर्म इंद्रिया जिसमें शांत हो जाए। और इधर से इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं से मुक्ति, थोड़ा दूर की है। और निरसंकल्प अवस्था, ब्रह्मचर्य अर्थात निरसंकल्प अवस्था। और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव संकल्प, राइट तो सभी है पर थोड़े दूर है ब्रह्मचर्य। आत्मिक दृष्टि वृत्ति। और सभी उत्तर राइट है, परंतु वास्तव में ब्रह्मचर्य का सीधा जो संबंध है, सभी विकार से तो है परंतु काम विकार से सबसे ज्यादा है। ब्रह्मचर्य अर्थात काम जीत, ब्रह्मचर्य अर्थात काम से संपूर्ण मुक्ति, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों में जो उत्तेजना है विकार की, काम विकार की, बाकी नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, वो उत्तेजना जैसे कि समाप्त हो जाए, वो ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की जो हम परिभाषा कर रहे हैं वो केवल और केवल काम से संबंधित है। फिर हमारे ज्ञान के अनुसार तो बहुत बड़ी परिभाषा हो सकती है, परंतु आज जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक है, शायद ही यज्ञ में भी कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जैसे इसे वर्जना कहा जाता है, टैबू, कोई चर्चा नहीं करेगा इसकी। और क्योंकि ये क्लासेस कहीं से कहीं चले जाते हैं, क्योंकि हम यहां जो बैठे हैं बस इतने ही लोग हैं, इसके लिए हम चर्चा कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता है। कुमारों को तो है ही, पर बहनों को भी है, क्योंकि आत्मा जो है ये इस जन्म में स्त्री या पुरुष के शरीर में, इसके पहले जन्म में कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, हर जन्म में नए नए शरीर बदले हैं हमने, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष। जबकि देखा गया है कि जो व्यक्ति जन्मांध है, जिसने उस पुरुष ने कभी स्त्री का चेहरा भी नहीं देखा है, उसमें भी काम वासना है। कहां से आई? पूर्व जन्म से, पूर्व जन्म से वो आया है। इसलिए भारत की संस्कृति में बहुत सारी महान योगिनियां कहो, तेजस्विता तपस्विनी आत्माएं हुई है। शास्त्रों में गार्गी, मैत्री, सुलभा, ऐसे बहुत सारे स्त्रियों के वर्णन है जो संपूर्ण ब्रह्मचारिणी थी। और कुछ ऐसी भी स्त्रियों का वर्णन है जो पतिव्रता थी, संपूर्ण पवित्र थी। ऐसी भी स्त्रियों की बहुत महिमा है, यहां तक कि देवता भी उनके सामने नीचे, सावित्री, सत्यवान, बहुत सारे हैं ऐसे, अनुसुईया माता, पूजा होती है मंदिरों में, रेणुका माता। तो ये सारी स्थिति, सीता ले लो, सारी ये जो स्त्रियां है पतिव्रता थी, परंतु एक पतिव्रता बिल्कुल पक्की, तो इनमें भी वो पावर थी प्यूरिटी की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचर्य का सबके लिए है। अभी सतयुग में क्या होता है, इस देह में हार्मोन्स है बहुत सारे, सेक्सुअल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इस तरह के हार्मोन्स होते हैं। उस हार्मोन्स की वजह से उत्तेजना होती है। सतयुग और त्रेता, ये जो दो युग है, शरीर में जो स्त्रव फ्लूइड जो है, जो एनर्जी है, जो कि द्वापर से बाहर जाने लगी स्त्री और पुरुषों में, सतयुग में वो अंदर ही अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाती थी। वो जो एनर्जी है फ्लूइड, वो अंदर ही अंदर एब्सॉर्ब हो जाती थी, वो कभी बाहर नहीं जाती थी। इसके लिए उनके अंदर वो ब्रह्मचर्य का तेज था, योग बल था, परंतु द्वापर से देहभान आने के कारण वो बाहर जाने लगी, इसकी वजह से शक्तियां कम होने लगी। जब भी इस शक्ति को बाहर जाने से रोका जाएगा, अपने आप शक्ति अंदर जमा होती जाएगी। विज्ञान कहता है यह नैसर्गिक नहीं है, परंतु विज्ञान को अभी सतयुग और त्रेता का कोई ज्ञान नहीं है। विज्ञान कहता है यह दमन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, परंतु उसे सतयुग त्रेता का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा समय था कि हम सब देवी देवता थे और ये सब भाव ही नहीं थे वहां पर। ये जो दैहिक आकर्षण जो द्वापर से चालू हुआ वो था ही नहीं वहां पर। 15 वर्ष की उम्र से, 12 या 15 वर्ष की उम्र से छोटे बच्चों में ये आकर्षण चालू हो जाता है, उसको जानना चाहते हैं, और वो जानते हैं गलत तरीके से, अपने मित्रों के द्वारा, इधर से उधर से उधर से विकृतियां उत्पन्न होती है धीरे धीरे। आज अगर सबसे बड़ा कोई एडिक्शन है संसार में, जिसकी बहुत ही कम चर्चा है और ब्राह्मण परिवार में बिल्कुल भी नहीं, सेक्स एडिक्शन सबसे ज्यादा, व्यसन जिसको कहेंगे, विश्व भर में सबसे ज्यादा पाप भी उसी की वजह से होते हैं, सबसे कम चर्चा उसकी होती है, पर क्योंकि डर। तो ये जो एनर्जी है इसको कुछ ऐसा करना है कि वो परिवर्तन हो जाए। बाबा ने कहा विकार जो है वो दुश्मन ना रहे, शत्रु बन जाए, उनका रूप रूपांतरित हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उनको दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है, एनर्जी है। शरीर में कुंडलिनी शक्ति शास्त्रों में लिखाई हुई है, 7 चक्र है, सबसे नीचे मूलाधार, थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि के पास मूलाधार, हृदय में अनाहत, यहां पर विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। नीचे के जो तीन चक्र है नाभि से नीचे, यहां एक लॉ ऑपरेट होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, नीचे के नीचे बहती है शक्ति। कई लोग इन तीन ही चक्रों में जीते। बीच का चक्र है प्रेम का, अनाहत, और ये जो यहां से चक्र चालू होते हैं विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये स्पिरिचुअल हायर लेवल के चक्र है। अब जिनको ये जो नीचे के चक्र है, सबसे नीचे वाला मूलाधार, भोजन, भोजन ही सब कुछ है, देह और भोजन, कई व्यक्ति बस इसी में जीते सारा जीवन। उसके थोड़ा ऊपर है विशुद्ध स्वाधिष्ठान, पावर, सत्ता, दूसरों पर अधिकार। ये जैसे पॉलिटिशियंस, वो काम विकार से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, पर कई लोग हैं नीचे के लेवल में ही है, मूलाधार में ही सारा जीवन जी रहे। वो है भोजन, वो उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान सत्ता, उसके ऊपर है काम विकार मणिपुर। ऐसे ये तीन चक्र है, तीनों चक्रों में ही जीवन घूमते रहता है बस अधिकतर लोगों का। हाँ, दूसरी बात, बाबा ने आज तक किसी भी चक्र की कभी भी कोई चर्चा नहीं की है। एक, बाबा ने आज तक ब्रह्मचर्य की बहुत कम चर्चा की है, जो चर्चा की है प्यूरिटी की चर्चा की है। अच्छा, वास्तव में ऐसे कोई चक्र है क्या? सबसे पहली बात, ऐसे कोई चक्र है ही नहीं, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो शरीर की रचना है, उसमें ऐसे कोई चक्र नहीं है। ये जो चक्रों का सिद्धांत है, ये एक स्पिरिचुअल प्लेन है। मतलब आप संसार के व्यक्तियों को स्टडी कर ये चार पांच सात लेवल है उसमें उसको कैटेगराइज कर सकते हो, कि ये कैटेगरी भोजन वाली, ये कैटेगरी पॉलिटिशियंस की, ये कैटेगरी काम विकार वालों। ये खाली एक, इसको कहे इमेजिनरी चक्र जो है, ये इसका ज्ञान से सीधा संबंध नहीं है, परंतु हम इसके लिए चर्चा कर रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि यह सत्य है या ऐसे कोई चक्र है। जगदीश भाई ने इसके बारे में काफी लिखा है, चक्रों के बारे में, परंतु द्वापर से ये सब किसने लिखा, पहला प्रश्न। हमने ही लिखा है, और किस आधार से लिखा है, दुनिया को स्टडी कर किस आधार से लिखा है, वो प्यूरिटी की हमारे पास पावर थी तभी हम एनालाइज कर पाए और ये ऐसे चक्र इस शरीर में बनाए हैं। अगर हम सोचे चलो ये चक्र है ही नहीं, चलो मान लिया नहीं है, तो हम खाली अभी कहेंगे कैटेगरीज दुनिया की। एक कैटेगरी है केवल भोजन में लगे हुए, दूसरी कैटेगरी है सत्ता, बस पावर चाहिए, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, तीसरी कैटेगरी है काम विकार, उससे बाहर ही नहीं निकलते। एक कैटेगरी है बस, तीनों में भी घूमते रहते, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। एक कैटेगरी है जिसमें तीनों ही चीजें एक साथ है। तो इसको खाली इस तर्क से लिया जा सकता है, इस ढंग से, कि ऐसी कैटेगराइजेशन किया हुआ है समझने के लिए। बात एक ही है, केवल समझने के लिए। ऐसा कोई चक्र इधर हार्ट में नहीं, हार्ट को खोलो तो वहां तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं। हम खाली इसलिए कह रहे हैं इस सिद्धांत को समझने के लिए कि ये चेतना के तल है, कि हमको ऊपर ऊपर उठना है। एक भोजन का तल, एक वो दूसरों पर अधिकार जमाने का तल, काम का तल, यहां आता है प्रेम का तल। प्रेम अर्थात वो काम विकार से ऊंचा है थोड़ा, शुभ भावना है सबके प्रति, पर उसके भी ऊपर बहुत सारे तल है, जो हमारी बाप समान स्थिति है वो यहां है एक रीति से। तो यहां का जो तल है, यहां प्रेम है, ऐसा यहां कुछ नहीं है, पर हम कह रहे हैं एक तल है अध्यात्म का, कि जिसमें अभी व्यक्ति इन तीनों चीजों से ऊपर उठ गया है। जैसे समाज सेवा करते हैं, ये थोड़े हायर लेवल के लोग हैं, वो कोई विकार में नहीं है, उनको भोजन और वो सब चीजों से सत्ता के भूखे नहीं है, निस्वार्थ सेवा, जैसे अन्ना हजारे जी, ये लोग जो है वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। इनका तल थोड़ा मनुष्यता से ऊपर है, जो भी साधु संत योगी पुरुष है उसके भी ऊपर एक तल जो बताया है वो है विशुद्ध चक्र। यहां सत्य ज्ञान की प्यास चालू होती है, ये मॉरेलिटी का तत्व है, नैतिकता, नैतिक व्यक्ति होते हैं ना, अच्छा रहो, सबसे सेवा करो, ये करो, ये तल है, उसके भी ऊपर एक चेतना का तल है और वो तल है ज्ञान का। ज्ञान की खोज यहाँ विशुद्ध चक्र में चालू होती है, यहाँ फिर हृदय का पवित्रकरण दिव्यीकरण चालू होता है कि पता चलता है कि ये विकार जो है इसने बहुत दुख दिया है, अब इनसे भी आगे आगे जाना है। तो ये विकारों को जीतना और ये आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र अर्थात ये जो भ्रुकुटी, हम इसको बाबा अपनी भाषा में कहते हैं तीसरा नेत्र। अब तीसरा नेत्र तो कोई है ही नहीं, तीसरा नेत्र है कोई? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई तीसरा तो होता ही नहीं अंदर। बाबा ने बहुत सारे शास्त्रों की बातें ली है और एक तरफ बाबा कहता है ये सब झूठे हैं, ठीक है, एक तरफ तो कहते रामायण झूठा है, महाभारत झूठा है, दूसरी तरफ कहते तू हनुमान हो, अब हनुमान कहते हम वो तो झूठा है, दूसरी तरफ तुम पांडव हो, अब पांडव थे ही नहीं, फिर कहते महाभारत का युद्ध होने वाले, महाभारत हुआ ही नहीं कभी। तो ये सब रूपक है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, ऐसा कुछ है नहीं कुछ भी, ना तो कोई हनुमान था, ना तो कोई रावण था, ना तो कोई राम था, ना तो कोई अंगद था। अंगद था क्या? बाबा कहते तुम अंगद हो, अंगद समान, ये तो हम लोग तो समझ जाएंगे, विदेशियों को बहुत मुश्किल होता है ये समझना, हु इज अंगद, उनको पता ही नहीं अंगद, और बाबा कहते तुम अंगद हो, और एक तरफ कहते सारे शास्त्र झूठे है, तो झूठे है तो उसके उदाहरण क्यों देते? लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आपको भी पूछा होगा, एक तरफ आप कहते हो सारे शास्त्र झूठे हो और उदाहरण तो शास्त्रों के ही देते हो, अब बोलो, ये ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो केवल ये भाषा का विलास है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बस बात को समझाने के लिए, क्योंकि बाबा जो सिद्धांत समझा रहे वो निराकार सिद्धांत है। अब उन निराकार को टंगा रहे हैं बाबा संसार की चीजों को उदाहरण देकर, अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए खूंटी ले रहे, उसमें टंगा रहे कि समझो। जैसे उस दिन उदाहरण दिया था, जैसे कि ऊंची पहाड़ी पर तुम चले जाते हो तो धरती छोटी दिखती है, वैसे फरिश्ता रूप में चले जाओ और सकाश दो, ये उदाहरण है। सारी मुरली, एक मुरली में कितने सारे उदाहरण है। आज की मुरली में एक उदाहरण है, जब चींटी मर जाती है तो क्या होता है, मक्खियां आ जाती है, वैसे ही जब माया तुम्हें मार देती है, मक्खी मर जाती है तो चींटियां आ जाती है, वैसे ही तुम जब मर जाते हो तो माया आक्रमण करती। अभी कौन सी चींटी, कौन सी मक्खियां, कौन माया, माया कोई व्यक्ति है, माया है ही नहीं कोई, ये सब भाषा का विलास है, है कुछ भी नहीं। अब बाबा को एक ही ज्ञान 80 साल तक देना है तो क्या रोज एक ही कहते रहेगा, आत्मा समझो, बाप को याद करो, आत्मा समझो, ये इतना विस्तार नहीं, तो ज्ञान केवल एक ही वाक्य का है, आत्मा समझ, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो, एक ही वाक्य है उसका, ये इतना विस्तार है, और एक मुरली नहीं, इतने सालों से एक ही चीज है, पर हर मुरली अलग अलग ढंग से। इसके लिए रूपक जिसको कहते हैं, किंवदंतियां, शास्त्रों की बातें, ये विस्तार है सारा ज्ञान का, समझने के लिए बस, और कुछ नहीं। तो सहस्त्रार अर्थात यहां पे आज्ञा में जैसे तीसरा नेत्र खुल गया, अर्थात विवेक शक्ति जागृत हो गई है, अब पता चल गया सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, और लास्ट जो है वो संपूर्णता की स्टेज है। तो चक्र ऐसे कुछ नहीं है, परंतु अवस्थाएं है ये, मन की, चेतना की, चित्त की, स्थिति की, आत्मा की। हम बात कर रहे हैं विकार की, काम, चार स्टेजेस है उसमें, कैसे इसको जीते, जो कि कुछ बाबा ने बहुत विस्तार किया है उसका, पर डायरेक्ट कहीं नहीं कहा है ऐसा करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, परंतु मुरलियों में आया सब कुछ है, सब कुछ आया है मुरलियों में, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि नहीं आया है। स्त्री पुरुष के संबंध की बहुत कभी महिमा की है, इसमें विकार नहीं हो सकता है, तो कभी उसकी ग्लानी भी की है। विरोधाभास बहुत मिलेगा आपको मुरलियों में, बहुत भयंकर विरोधाभास, अगर गहराई से स्टडी करो तो। कभी कहेंगे ये गीत संगीत कविता बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी कहेंगे उदास हो जाओ तो गीत सुनो, कभी कहेंगे जो कहते हैं मेरा शिव बाबा से ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, बिल्कुल वर्षा मिल नहीं पाएगा। कभी कभी मुरली में आता है ये ब्रह्मा को याद करोगे तो पाई पैसे भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। एक मुरली में तो था ब्रह्मा को याद करोगे तो नर्क में जाओगे, यह देहधारी है, विरोधाभास। तो एक चीज देश काल और परिस्थिति अनुसार मुरलियां चली है, जैसे लोग बैठे हैं सामने उस अनुसार मुरलियां चली थी 60s में जो बाबा ने चलाई। तो मुरली को इसके लिए सुबह कहा ना, वाक्यार्थ शब्दार्थ भावार्थ गुणार्थ, ये चीजों को समझना है, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बहन ने हमको, हम क्लास करा रहे थे एक बार, तो एक विदेशी बहन बैठी थी, उसमें बाबा कह रहे थे तुम बच्चों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी चाहिए, बाबा नहीं चाहता कि तुम बच्चे मेहनत करो। तो वो एकदम डिबेट करने लगी मेरे से, वो कहती है कि ऐसे कैसे, बाबा ही तो कहता है मेहनत तो करनी चाहिए, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है, और अभी कह रहे हो आपकी मेहनत नहीं करो। बाबा कहते हैं ना, बाप बच्चों को मेहनत मुक्त देखना चाहता है, मोहब्बत से करो। तो ये शब्दों को अगर पकड़ लिया तो विरोधाभास है। भाव क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल। ये जो ऊर्जा है काम की इस देह में, स्त्री या पुरुष कोई भी, उसमें इसको कंट्रोल करना है। दूसरा, इसको कंजर्व करना है, मतलब संरक्षण करना है इसका। पहला नियंत्रण, दूसरा संरक्षण, तीसरा डाइवर्शन, और चौथा रूपांतरण। तो पहले उस दिन भी क्लास में सुनाई थी, पहला है कंट्रोल। सारी जो श्रीमत है इसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी धारणाएं हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल में शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं, मूल्यों में भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु फिर भी हम कुछ बातें चर्चा करेंगे जो कि शास्त्रों में लिखी है। जगदीश भाई ने भी जो अपनी किताब में भी लिखी है, और हर ब्रह्मचर्य की किताब में जो बातें लिखी रहती है, जो कि पतंजलि राजयोग जो है उसमें भी वो बताई गई है, स्त्री और पुरुष का ये जो संबंध है इसमें काम विकार कैसे आता है। सबसे पहला बताया है दर्शन, देखना। इसके लिए बाबा ने एक पाठ पक्का किया है कि आत्मिक दृष्टि हो। आत्मा के बगैर अगर कुछ और देखा शरीर, तो ये विष है, पूरा शरीर विष से भरा हुआ है। दूसरा स्पर्श, स्पर्श ये जो इच्छा है स्पर्श की, कैसा भी हो फिर हो, किसी को लगता है मेरे सिर पर ही कोई हाथ रख दे तो अच्छा लगता है, वो भी कामना में आता है सारा। तीसरा कीर्तन, प्रशंसा ही कहना किसी भाई की या किसी पर्टिकुलर बहन की, वही अच्छी लगती। वो मुरली अगर सुनाए तो क्लास में जाएंगे, अगर वो कहीं बाहर गई तो क्लास में आना बंद। क्या ये दिव्य प्रेम है? कौन सा प्रेम है ये? क्या मुरली के लिए प्रेम है या बहन के लिए प्रेम है? वही चाहिए, और वो रही तो उसकी बहुत महिमा, बहुत महिमा, बहुत महिमा। मन ही मन महिमा, दूसरों के सामने भी महिमा। बाबा इसको कहते हैं लगाव झुकाव। ये जो है ना लगाव झुकाव, एक बार विदेश की बहनें दादी के पास आई, झगड़ा हो गया था उनमें, कुछ हो गया होगा, तो दादी ने कहा गया था ये झगड़ा ठीक है चलेगा, वो आकर्षण नहीं चाहिए, आसक्ति नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट इज बेटर देन अट्रैक्शन। कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा, वो फिर भी ठीक है, पर वो आकर्षण होकर रहा ना, आसक्ति अगर ले, लगाव झुकाव अगर है तो उसमें बहुत जबरदस्त गड़बड़ है, क्योंकि वो लगाव झुकाव बहुत दुख देता है, ये झगड़ा थोड़ा कम दुख देता है, ये चलेगा। कॉन्ट्रोवर्शियल बात है परंतु बहुत गहरी बात है, क्योंकि झगड़े में हम कभी आसक्त नहीं होते, और वो जो होता है ना प्रेम मैत्री, उसमें इतना आसक्त हो जाते कि बहुत बेचैनी, अंदर से बेचैनी एंग्जाइटी रहती है, उसको कुछ होना चाहे, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम ऐसा लगने लगता है। ये सब जो होता है उसके साथ होता है, आसक्ति के साथ। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर बेटर, अगर किससे झगड़ा है ना ठीक है, वो मनसा से सकाश देते रहो, वो आसक्ति से तो अच्छा ही है। तो खेल कीर्तन, प्रशंसा करते रहना। बाबा ने कहा है मुरलियों में किसी से भी प्रभावित नहीं होना है तुम्हें। अगर कोई बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, कुछ कुछ अच्छा लिख रहा है, किसी में बहुत अच्छी सेवा की कला है, सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछो उसमें किसने भरी हो, उससे प्रभावित होने की कोई बात ही नहीं है। उसमें वो कला किसने भरी है? क्या उसकी खुद की है? क्या परमधाम से लेके आया था? दाता की देन है, दाता का प्रसाद है। हमारी उसके प्रति आदर है, सम्मान है, हम स्तुति भी करते, अच्छा है, पर अति स्तुति करना, बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट करना, उसी की बात करना बार बार, वही टॉपिक को बार बार निकालना, ये आसक्ति है, ये लगाव है, उसी का नाम सजेस्ट करना कि इसको लिया जाए, उसको उसको ही आगे बढ़ाना, बाकियों को नहीं। फेवरेटिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पक्षपात का भाव जन्म लेता है। फिर यही बहन अच्छी है, यही जो है ना, यही माया है। सब अच्छे हैं ये ठीक है, पर यही अच्छा है, यही अच्छी है, यहां पर माया है। तो कीर्तन अगला है, खेलना जिसको संस्कृत में कहते केली, खेलना। अभी एक दूसरे से, ये तो स्थूल की बात है, हमने देखा है कि कॉलेज में देखो साथ साथ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर विकार भी उनमें उतने ही होते हैं। एक होता है गर्ल्स स्कूल, एक होता है बॉयज स्कूल, एक होता है मिक्स्ड जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों साथ में रहते हैं, को एजुकेशन, वहां पे गड़बड़ ज्यादा होती है। आप देखो कुछ कुछ इस्लाम की स्कूल्स है, बहुत मर्यादा युक्त रहता है सब कुछ, वही अच्छा है उसका निर्विकारी रहना। और दूसरा ये मिक्स स्कूल, हमको पूरा अनुभव है हमारे मेडिकल कॉलेज का, हम एक ही थे ऐसे जो उन सब से बच गए थे, नहीं तो सबका एक लड़का तो इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसको किसी एक दूसरी से प्यार हो गया और उसने मना कर दिया एमबीबीएस में। एमबीबीएस किस लिए किए? डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर किस लिए? विश्व की सेवा करने के लिए। वो रह गया बाजू में और ये दूसरा ही चालू है, इधर फेल हो गया, क्या क्या हुआ अफेयर्स, कितना चलता है कॉलेजों में, ये बहुत ज्यादा, जिसको कोई अच्छा लगता है किसको कोई ईर्ष्या, जेलसी, ग्रुप्स, ये सब चालू हो जाता है। इसके लिए ये खेलने वाला बिजनेस दूर। अगला है गुह्य भाष्य, पांचवा, प्राइवेट टॉक्स। देखते हैं हम भाइयों को, कोई एक इधर अंधेरे में जाके बात कर रहा है, कोई कुधर बात कर रहा है, और घंटों तक बातें चल रही है, घंटों तक बातें। गुह्य भाष्य, प्राइवेट कन्वर्सेशन, फिफ्थ, लंबी लंबी बातें, फोन करो तो फोन एंगेज कंटिन्यूअस, प्राइवेट, सीक्रेट। हमको ऐसा लगता है 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। हाँ, अगर कोई सेवाई का ही कुछ चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, तो अलग बात है, बाकी किसी से भी, स्टूडेंट्स ये सारे, बात कर लिया और रख दिया, खत्म। क्योंकि इससे फैमिलियरिटी बढ़ती है। फिर बहुत ज्यादा बात करना, रात में बात करना, 10 बजे के बाद स्टॉप, जरूरत नहीं है किसी भाई से बात करने की फोन पर या कुछ कर। सेवा हो तो 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, सेवा हो तो हमको, हाँ बड़ी सेवा। हमको याद है, हमको एक बार रात को 1:30 बजे सेंटर पर बुलाया था, कभी 2 बजे बुलाया था, एकदम सीरियस हो गई थी कोई बहन, तो जाना पड़ा, वो बात अलग है। और हमको भी एक बार जाना पड़ा, हमको एक बार पता चला हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है मुंबई में, तो हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं था उस समय, तो हम उस दिन रात को बहन जी को फोन किया और रात को गए 2 बजे, और थोड़ा जो भी सामान लेना था हमको वहां से और लेके गए। इमरजेंसी सिचुएशन अपवाद है, एक्सेप्शन, पर रूटीन जरूरत नहीं है। क्या बात करें और क्या बात करें, क्योंकि वो बातें भी ऐसे ही इधर उधर की बातें, सेवाओं का समाचार बस सुनाने लग गए, वो फिर धीरे धीरे सेवाएं बाजू में रह जाती है, फिर इमोशंस, फीलिंग्स, फिर वो आने लगती है। हमको ऐसे भी बीच में भी एक बहन का फोन आया था, वो कह रही थी कि एक भाई है जिससे मैं बहुत दूर रहना चाहती हूं पर रह नहीं पाती, क्या करूं। मुझे पता है तो मैंने उसको ना ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा, पर वो अभी फिर आके पूछता है क्यों तुमने ऐसा किया, फिर उसका नंबर निकाला, फिर वो पूछता है, फिर कभी वो नाराज हो जाता है, तो मुझे लगता है ये मुझे कहीं छोड़ के तो ना चले जाए। है सेंटर का भाई, रोज आता है, कुमार भय इनसिक्योरिटी चाहिए। वो तो हमने उसको समझाया था ना। तो पर आधार कंधा रख के रोने के लिए अच्छा लगता है थोड़ा, कोई आंसू पूछे, रुमाल दे दे निकाल के अपना, तो कितना अच्छा लगता है। बाबा इतना अपनी बाहें पसारे बैठा है, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए रुमाल छोटा सा। तो ये जो गुह्य भाष्य है ये भी बहुत बढ़ रहा है, और जब से ये जो व्हाट्सएप और ये सारी चीजें आई है इतना ज्यादा बढ़ गया है वो, बहुत ज्यादा, इतना व्यर्थ है उससे। कभी कभी मैसेज नहीं भेजते, वो जो इमोटिकॉन्स इमोजीज जिससे कहते हैं चित्र होते हैं गोल 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 गोल, उससे ही झगड़े भी होते हैं, उससे भी झगड़े, केवल वो जो इमेजेस है, गुस्से वाला चित्र भेजा ऐसा तो वो नाराज। तो वो जो होता है ना खेल है वो, ये खेल नहीं करना है। ये जो गुह्य भाष्य है ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आ रहा है। अगला है संकल्प, संकल्प करना कि कहां मिलना है, एकांत में मिलना है, उसके कांटेक्ट में जाना है, हाँ वो मधुबन में आ रहा है या आ रही है तो मीटिंग अरेंज करना। हाँ वो भी मिलना ही एक रीति से संकल्प। सातवां है अध्यावसाय, अध्यावसाय अर्थात निकट जाना फिजिकली, ये बहुत आगे की स्टेज है, शारीरिक रूप से उस व्यक्ति के निकट जाना, कभी हाथ पकड़ना, कभी सहारा देना, कभी पीठ थपथपाना, ये जो है ये बहुत आगे की स्टेज है। ये तभी होता है जब दोनों का बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो गया है इमोशनल तल पर, इमोशनली इतने अटैच हो गए हैं कि फिर उनको कुछ लगता भी नहीं उसका, और अच्छा भी लगता है। और लास्ट में है क्रिया, आठ स्टेजेस। पहला दर्शन, दूसरा स्पर्श स्पर्शन, तीसरा केली या कीर्तन, चौथा केली, पांचवा गुह्य भाष्य, छठवा संकल्प। संकल्प में भी इमेजिनेशंस कि मैं उसके साथ हूं या वो मेरे साथ है, मेंटल मैरिजेस मानसिक विवाह ब्रह्मचारियों के जीवन में, किसी को अपना साथी बना के रख दिया है, ऊपर से भाई बहन, ऊपर से साथ साथ सेवा, अंदर से पति पत्नी। क्या ये ब्रह्मचर्य है? तो पहला है कंट्रोल, उसमें ये आठ बातें। दूसरा है कंजर्व, इस एनर्जी को कंजर्व करना है, उसके लिए वैराग, वैराग भी किससे? इस देह से। एक व्यक्ति था वो अपने गुरु के पास गया, उसके गुरु ने कहा कि तू एक ऐसी चीज ले आ जो तुझसे भी निकृष्ट है, तुझसे भी निकृष्ट है। तो उसने बहुत ढूंढा कि मेरे से भी नीच ऐसी कोई वस्तु है, कहीं नहीं मिला उसे। उसको हर चीज को उसने देखा तो पाया कि ये तो मेरे से थोड़ी श्रेष्ठ है ये। फिर सबसे लास्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटा विष्टा स्टूल, उसको लगा ये चीज है, ये जो चीज है सबसे निकृष्ट, इससे निकृष्ट और क्या हो सकता है? दुर्गंध, मुंह लोग देखते ही रुमाल लगा देते हैं विष्टा को देखते, तो उसको हाथ लगाने जाता है, तो वो विष्टा बोलती है खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। एक समय मैं इतनी श्रेष्ठ मिठाई थी, जैसे तुम्हारे शरीर में गई तो मेरा यह हाल हुआ, मेरे से भी निकृष्ट तुम हो, हां तुम्हारे भी तुम्हारे शरीर से, जैसे तुम्हारे शरीर में मैं गई ये मेरा हाल हुआ, तुम्हारा जो शरीर उससे भी मैं निकृष्ट, तुम मेरे से भी तुम्हारा ये जो देह है वो निकृष्ट है, हड्डी मांस का बना हुआ है और सारा आकर्षण इसी पे, ब्यूटीफुल हैंडसम ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उपन्यास वैसे ही लिखे जाते हैं, वो और ज्यादा भ्रमित करते हैं युवकों को, मूवीज ऐसी बनती है कि उससे और चित्त पागल हो जाता है, जुनून होता है, वो पागलपन, वही चाहिए बस, वही व्यक्ति चाहिए, मार देते हैं एक दूसरे को, आत्महत्या कर लेते हैं या फिर जीवघात, आत्मघात भी, आत्मा का भी घात है वो एक रीति से। तो वैराग देह से, दूसरा साधन टीवी मोबाइल इंटरनेट, तीन चीजें या मीडिया, जितना सबसे अच्छी चीज है ये उसका सेवा के लिए प्रयोग करना, परंतु वो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं उसमें साधनों में। तीसरा फैशन, फैशन सफेद में भी फैशन, व्हाइट में भी फैशन, सेंट स्प्रे ये वो, कभी कभी हम कुटिया में योग करने बैठते हैं, कोई बहन आके बैठती है, ऐसी सुगंध की सीधा सूक्ष्म वतन से नीचे ही आ जाना पड़ता है, क्या लगा के आते हैं पता नहीं, सुबह सुबह 3:30 बजे आश्चर्य होता है कभी कभी, क्या लगाते हैं, कौन सा स्प्रे सेंट बीके तो हर बीके मेरे ख्याल से 2 बार तो स्नान करते ही, कोई कोई 3 बार भी करते हैं, हाँ तो फिर भी वो पूरा मतलब वो जाते हैं तो बेचारा कोई परम धाम में होगा तो धड़ाम से नीचे गिरता होगा। फैशन पाउडर सेंट स्टाइल ये सब वो विकारी लोगों का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा सौंदर्य जो है ना आत्मा का सादगी हमारा सौंदर्य है, जितनी हमारी ज्यादा सिंप्लिसिटी होगी उतने ही हम सुंदर है, हमें वो संसार की स्त्रियों के जैसा पुरुषों के जैसा सुंदर नहीं बनना है, उनकी तो वो दिखावे वाली सुंदरता है, वो जो दिखा रहे टीवी में 4-4 घंटा मेकअप करने के बाद का दिखाते हैं, झूठ है उसमें, आत्म प्रवंचना है, वो सब हमें नहीं करना है, ये जो फैशन और ये सब है। अगला है डाइट, डाइट में भी खाऊ खाऊ म्याऊ म्याऊ बाबा कहते हैं, ये खाऊं वो खाऊं, दिन रात बस भोजन का ही चिंतन है, सुबह खा लिया अभी अभी आगे क्या खाना है, अभी रात को क्या खाना है, ब्रह्मा कुमारी बनना इसका अर्थ ये तो नहीं कि किचन में ही सारा जीवन बिता देना, संयम, संयम चाहिए, संयम बहुत आवश्यक है, और संयम अगर रहेगा ना तो ये शरीर भी अच्छा रहेगा, भोजन पर संयम। तो ये कुछ बातें हैं कंजर्व में, मतलब संरक्षण शक्ति का। चौथा तीसरा है डाइवर्शन, ये जो काम की ऊर्जा शरीर में बह रही है उसको डाइवर्ट कर दो, चैनलाइज कर दो, उसके लिए फिर है ज्ञान योग और धारणाएं। ज्ञान में भी मुरली का बहुत अच्छा मनन, बहुत अच्छा चिंतन अध्ययन, उसके बाद ऐसा उसमें गहराई में उसमें डूबना है थोड़ा, जरूरी नहीं कि हम पूरी की पूरी ही पढ़ ले, एक वाक्य ले लिया और अब उस पर रुक जाओ, जैसे आज घृणा की बात आई तो घृणा पर जैसे चिंतन करो, घृणा क्या है, घृणा की परिभाषा क्या है, घृणा से क्या नुकसान होता है, और फायदे भी लिखो अगर कुछ आते हैं तो, अगर हो तो और लगता हो तो कुछ भी, चिंतन करना है। जैसे निबंध के लिए बच्चों को टॉपिक दिया जाता है ना, मेरा भारत, मेरी स्कूल, लिखना चालू करते हैं वो लोग। वैसे ही हम भी अपने आप को एक निबंध का टॉपिक दे कि मुझे इस पे लिखना है, या चिंतन करना है, सोचना है, या चर्चा करना है किसी के साथ। तो ज्ञान और योग, योग के अलग अलग प्रयोग करना है ताकि एनर्जी डाइवर्ट हो और हम बिजी रहे। अगर बिजी नहीं रहते हैं तो माइंड जाता है उधर ही जाएगा। हम देखते हैं मधुबन में भी, हॉस्पिटल में भी, अचानक एक दिन एक भाई घर भेज दिया गया 6 मास के लिए। हमें तो खबर ही नहीं होती ये क्या हो करेगा, क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसके जीवन में क्या हो रहा है। जब हम पूछते हैं अरे वो भाई कहाँ चला गया, मतलब जो रोज है या कुछ करता है एक पर्टिकुलर सेवा और हमको उसका काम, उससे काम है, वो है ही नहीं, तो कहते वो तो चला गया घर, उसको भेज दिया। क्यों भेज दिया? वो तो मुरली में भी दिखता है, वो मुरली में जाना एक दिखावा मात्र रहता है बस, ऊपर ऊपर से, अंदर से विकार अग्नि जल रही है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सारा है, कमरे में बंद करके कौन व्यक्ति क्या कर रहा है किसको क्या पता, और अचानक कुछ के कुछ निकल आता है, और अचानक पता चलता है अब घर है, बाद में पता चलता है अब 1 से 2 और 2 से 3 हो गया है, इधर 15 साल रहने के बाद, इधर 20 साल रहने के बाद। ये सत्य है, बहुत कटु सत्य है यज्ञ का, बहुत कटु सत्य। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दबा हुआ सारा था विकार, चैनलाइज नहीं किया एनर्जी को, डाइवर्ट नहीं किया, खाली दिखावा था। और लास्ट है ट्रांसम्यूटेशन, जिसको कहते कन्वर्शन, सब्लिमेशन, इंग्लिश में शब्द है सब्लिमेशन, हिंदी में शब्द है उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, मतलब उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एनर्जी को, उसका रूप ही बदल रहे हो, उसको डाइवर्ट हो गया, अब उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो हायर लेवल पे। वो जो नीचे की ओर शक्ति बह रही है और शरीरों को जन्म देती थी, अब वो शक्ति ऊपर बह रही है और इधर जा रही है रूपक के रूप में, एग्जाम्पल, वो ऊपर बह रही है। और एक बार शक्ति ने यहां से ऊपर बहना चालू किया तो ऊपर ही बहने लगती है वो, ये भी एक बहुत अच्छा है, इट्स लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ ग्रेविटी। नीचे यहां पे प्रेम के केंद्र पर आ गई तो यहां से ऊपर जाना बहुत आसान है। इसके लिए जो लोग समाज सेवी है उनको बहुत अच्छे से ज्ञान समझ में आ जाता है, क्योंकि नैतिकता तो उनमें है ही, ये तो मुश्किल उन लोगों के लिए जो अनैतिक है, जिनमें पहले से ही नैतिकता है, पहले से ही पवित्रता है। हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में सोफिया स्कूल है और सेंट मैरी स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुरानी, सब नंस है वहां पर पढ़ाने वाली, वो सब हमारे पास आती है, वो नॉनवेज खाती है, परंतु स्वभाव इनका इतना शीतल, इतना शांत है कि हमको लगता है ये हमसे भी अच्छे है, एकदम रॉयल, एकदम रॉयल। आएंगे तो ओपीडी के एकदम रॉयल्टी से बैठेंगे, रॉयल्टी से बात करेंगे, इतनी दिव्यता उनमें, नैतिकता कुट कुट कर भरी है। तो ये जो लोग हैं इस लेवल पर है, जैसे ये कैटेगरी, प्रेम है, विश्व के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भी प्रेम है, जिस जिसको मानते हैं भगवान उससे प्रेम तो करते हैं। तो ये जो एनर्जी है, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है उन 8 बातों से, दूसरा इस एनर्जी को प्रिजर्व करना है धारणाओं की शक्ति से, वैराग से, ये सारी जो डायवर्शन से उससे रोक, तीसरा इस शक्ति को डाइवर्ट करना है ज्ञान योग धारणा से, और चौथा ऊपर की 3 बातें अगर हो जाए, कंट्रोल, कंजर्व, डाइवर्ट, तो चौथी जो बात है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, दिव्यीकरण, डिवाइनाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, वो स्वतः ही होने लगेगी। और ये जो चीजें हैं जो हमने आपको बताई, ये आपको खुद तो याद रखनी ही है, और बीच बीच में, क्लास के बीच में, कभी कभी, हमेशा नहीं, जब भी काम से संबंधित पॉइंट आती है, एक जबरदस्त तीर छोड़ देना है अचानक बीच में, धक्का लगना चाहिए स्टूडेंट्स को बीच बीच में, ऐसा नहीं कि आया पॉइंट और छोड़ दिया, ऐसा पावरफुल बीच में धक्का दे देना है ताकि हिल जाए आत्मा। बाबा ने कहा है अगर कोई विकार में जाता है तो 1 साल तक मुंह नहीं दिखाए, साकार महावाक्य है बाबा के, ये इंद्र सभा है। तो बीच बीच में हमको स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि इस संस्था की सबसे बड़ी धारणा है अपवित्रता। और एक बात, अंतिम बात, फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। आज तक 1936 से लेकर तो 2017 तक जिस जिसने यज्ञ को छोड़ा या छोड़कर गए, उसका हमेशा एक ही कारण रहा है। ऊपर से दिखा झगड़ा हो गया, ऊपर से दिखा इसको इसको सेवा ठीक नहीं लग रही है, उस ऊपर से दिख रहा है कुछ 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 असंख्य कारण दिख रहे, पर कारण एक ही है और वो है अपवित्रता। दूसरा कोई कारण ही नहीं है इस यज्ञ से जाने का, एक ही कारण है, काम का आकर्षण। चाहे कोई 10 साल वाला है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कोई भी जो यहां से गया है, एक ही कारण है। इसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत सूक्ष्म है, इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, हम तो है ही पवित्र। सूक्ष्मता, बारीकी, इसको समझना है। ओम शांति। शाम का प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे? 5 बजे, 5। और एक क्लास हमने कहा था कंबाइंड रखना है, भाई बहने आएंगे बाकी परिवार वाले? कैसे बोलेंगे पर अभी? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, एक सेशन हम प्रश्न उत्तर का रखते हैं, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा होगा। तो 5 से लेकर तो 6:30 बजे तक,